एक गुमराह से अहले हक का मुकाबला हो रहा था। गुमराह लोगों का स्टेज अलग था और अहले हक का सच्चे लोगों का इधर था। तो एक गुमराह लोगों के आदमी ने खड़े होकर कहा कि तुम सब के सब, तुम में और सुअर में क्या फर्क है? तो अहले हक में से एक आदमी ने उतरा तखत से और हाथ से नापा, 20 फुट पर था वो दूसरा स्टेज। फिर उसने खड़े होकर कहा कि हम में और सुअर में 20 फुट का सुअर में 20 फुट का फासला है। हाजिर जवाबी है ये दिमागी है। तो दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था कि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी, कम खाओ जितना हजम हो जाए। इसलिए अल्लामा शामी ने फिका शामी में लिखा है कि इतना खा लेना कि जिससे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगे और पेट में तकलीफ हो, गैस्ट्रिक हो जाए, निज़ाम हज़्म खराब हो जाए, इतना खाना गुनाह है। अगर के हलाल था, वही हलाल गुनाह की सूरत में तब्दील हो गया। बीवी हलाल है मगर इस कदर कसरत से उसको इस्तेमाल करना कि जिससे उसकी भी सेहत खराब हो, उसकी भी सेहत खराब हो और दोनों को चक्कर आने लगा, जायज़ नहीं है। एक आलिम ने हकीमुल उम्मत को फरमाया कि मौलाना ये क्या आप बात कर रहे हैं, इन लहजोजे का आलय का हक्का, हमारे हुजूर फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी बीवी का हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तो हम हक अदा करते हैं, आप क्यों मना करते हैं? पढ़ लिया। तो इसको इशराक से ज्यादा सवाब मिलेगा, मस्जिद में बैठने का से ज्यादा इसका अजर है, क्योंकि इसने सेहत की हिफाजत का भी ख्याल किया। ये हकीमुल उम्मत के मलफूजात में मैंने खुद पढ़ा है, क्योंकि जब सेहत रहेगी, जब ना आप इबादत करोगे, अगर सेहत खराब हो गई तो फर्ज मुश्किल हो जाएगा, और सेहत खराब होने से मिजाज गैर मुतदिल हो जाता है। जो लोग कम सोते हैं, 6 घंटा सोना हर मुसलमान और हर इंसान पर जरूरी है, 6 घंटा सोना, और दिमागी काम करने के लिए 8 घंटा सोना। उस दिन में भी सो, पहलूला भी करो, दिन में भी आराम करो। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस फरमाई कि कीलू फैन शयातीन ला तकीलो, थोड़ा सा दोपहर दिन में भी आराम कर लिया करो, शयातीन कैलूला नहीं करते। इसीलिए लंदन से एक मेहमान आए थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो कैलूला नहीं करता, तो मैंने कहा वो भी शयातीन है। आपने देखा नहीं कि हुजूर फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयातीन कैलूला नहीं करते? चाहे 10 मिनट लेट जाओ, सोना भी जरूरी नहीं है, दोपहर का खाना खा के लेट जाओ, 5 मिनट सही, सुन्नत अदा हो गई, क्योंकि शयातीन कैलूला नहीं करते, उनको वसवसा डालने से फुर्सत नहीं है, निहायत ही बिजी होते हैं ये लोग। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है, हमेशा मुआलिजिन से मशवरा रखो। जब मिजाज गैर मुतदिल हो जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, बीवी बच्चों पर गुस्सा आने लगे, तो पहला काम ये करो कि वजीफा मुलतवी कर दो, जिक्र शेख से मशवरा लेकर जिक्र कम कर दो। अगर वो कहते बिल्कुल मुलतवी कर दो तो मुलतवी कर दो। मेरे शेख शाह अब्दुल गनी फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि शेख के मशवरे से अल्लाह का मिलता है। अगर शेख कहते कि खानकाह में झाड़ू लगाओ, मेरे मेहमानों के लिए चूल्हे में लकड़ी डालो और चाय बनाओ और खानकाह में झाड़ू लगाओ, तो वो इसी से वली अल्लाह हो जाएगा। अल्लाह का रास्ता शेख के मशवरे से तय होता है। एक साथ थाना भवन पहुंचे और उन्होंने हुकूमत शुरू कर दी, आपने यहाँ लोटा क्यों रखा, आपने यहाँ क्यों नमाज पढ़ ली, आप ये क्यों कर रहे हैं? तो हकीमुल उम्मत ने उनको बुलाया, फरमाया कि आप शेख हैं या मैं शेख हूँ, यहाँ डॉक्टर कौन है, आप मरीज बन के आए हो या डॉक्टर बन के आए हो, आप मेरे मुरीदों पर हुकूमत कर रहे हो, अब जिक्र मुलतवी करो, तुम इस काबिल नहीं हो तुमको जिक्र बताया जाए, जब मैदे में कह हो रही हो तो हलवा नहीं दिया जाता, जिक्र हलवा है। अब तुम ऐसा करो, वजू खाने की नालियां साफ करो, मुसलमानों के जूते सीधे करो नमाजियों के, और खानकाह में झाड़ू लगाओ, तुम्हारे अंदर तकब्बुर है। 6 महीने के बाद इलाज हो गया, फिर हजरत ने उनको इजाजत दे दी। शेख को यह भी देखना पड़ता है। तो मिजाज का मोतदिल रखना यह शेख की जिम्मेदारी है, इसलिए शेख थोड़ा सा हकीम हो तो बहुत अच्छा होता है। अब मेरे पास तो आज भी एक खत आया अफ्रीका से, कि बिल्कुल मैं जंगल में भाग जाने को दिल चाहता है और नींद कम आ रही है, हर वक्त दिल गमगीन रहता है, गुस्सा भी चढ़ा रहता है। मैंने आज ही लिखा उनको कि सारा जिक्र मुलतवी कर दो, एक सेब रोज़ाना खाओ और खूब जंगलों में और दोस्तों के साथ हंसो बोलो और सुबह टहलो, जब तक मेरा इजाज़तनामा ना जाए मुझ जिक्र को मुलतवी कर दो, और दूध पियो और सर पर कद्दू काहूर खशखाश और बादाम का तेल लगाओ और दोस्तों में खूब हंसो बोलो ताकि मिजाज मुतदिल हो जाए। इसीलिए ड्राइवर देखना ज़रूरी है। अब एक ड्राइवर अगर ना हो और अंजन में पानी खुश हो गया और मोटर चली जा रही है, अंजन जल जाएगा। ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि उसमें पानी डाल दे। शेख की जिम्मेदारी है कि जब उसका दिमाग खुश्क होने लगे फौरन उसका वजीफा मुलतवी कर दे और उसको तेल की मालिश और सेब वगैरह बताओ। जो सेब खाता है आसेब से बचा रहता है, बजाय आसेब बुलाने के सेब से कहो आजा मेरे पास सेब खाओ। कल्ब दिमाग में कुवत रहती है तो वसवसे और शयातीन का असर नहीं होता, जिन्नातों का असर। मोहम्मद अली किले को पूछ लो टेलीफोन करके कि तुम्हारे पास कोई जिन आया कभी? हमेशा जिन कमजोरों को सताता है, बनिस्बत मर्दों के ख्वातीन पर ज्यादा असर होता है। जितना जो कवीउल कल्ब होगा, दिल मजबूत दिमाग मजबूत, उसको वसवसे भी कम आते हैं। इसलिए दोस्तों सेहत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने अल्लाह तआला से मांग रहे हैं। अगर सेहत अच्छी नेमत न होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुराद रसूल क्यों होता? आप फरमा रहे हैं सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका सेहत, ए अल्लाह मैं आपसे सेहत का सवाल करता हूँ। आगे क्या है? वल इफ्फता, और सेहत अच्छी रहती है तो बदमाशी भी सूझती है, इसलिए पाक दामनी भी नसीब फरमाई, क्योंकि बीमारी में तो हाय हाय करता है। सेहत अच्छी रहती है तो अंदेशा है कि इसके नफ्स में मिस्र सांड के हो जाए। लिहाजा वल इफ्फता, और हमें पाक दामनी अता फरमा। सेहत के साथ हमारी नजर भी पाक रहे और दिल भी पाक रहे। नजर पाक दिल पाक, कभी नजर नापाक होती है तब दिल नापाक होता है, कभी दिल पहले नापाक होता है फिर नजर नापाक होती है। ये दोनों लाजिम और मलजूम आगे पीछे होते रहते हैं। कभी नजर नापाक हुई तो दिल नापाक हुआ, कभी दिल में गंदे ख्याल आता है तो नजर नापाक हुई। और इफ्फत भी सबब है सेहत का। अब दूसरी तकरीर का रुख बदल रहा हूं। सेहत के साथ इफ्फत को मांगा, मगर पाक दामन रहने वालों की सेहत बहुत आला रहती है। तो सेहत के लिए पाक दामनी भी जरूरी है। नंबर तीन, वल अमानता, और हमें अमानत भी अता फरमाइए, क्योंकि सेहत आला रहती है तो नजर के खयानत का खतरा होता है और नजर महफूज रहती है तो सेहत का तहफ़ रहता है। दोनों तरफ से ऐसा घेरा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सेहत की वजह से हमारी उम्मत गुनाहों में मुबतला ना हो और गुनाहों के तहफ़ से मेरी उम्मत की सेहत की हिफाजत और जमानत रहे, और हमें ऐ खुदा हम सबको अमानत भी दे। अमानत क्या चीज़ है? पहले खयानत समझ लो तब अमानत समझ में आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या खायनत अलायुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरियों को देखता है जानता है और सीनों के गंदे ख्यालात से बाखबर है। लिहाजा चोरियां आंखों की और सीनों के राज, शेर सुनिए, ये शेर है, चोरियां आंखों की और सीनों के राज, जानता है सबको तू है बेनियाज। चोरियां आंखों की और सीनों के राज, जानता है सबको तू है बेनियाज। तो जब खयानत का इल्म हो गया कि आंखों से अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हराम लज्जत हासिल करना इंपोर्ट करना ये खयानत अल्लाह ने फरमाया, तो अल्लाह का खयानत का लफ्ज नाजिल फरमाना आंखों के लिए उस कल्ब के लिए ये दलील है कि तुम अपनी आंख और दिल के मालिक नहीं हो। यह हमारी अमानत है। तो रफुल अशिया भी अजदा देहा, हर चीज अपने जिद से पहचानी जाती है। लफ्ज खयानत बता रहा है कि आंखें अल्लाह की हैं हमारी नहीं है, जहां चाहो वहां डालो इन आंखों के आप मालिक नहीं हैं। अगर मालिक होते आप तो लफ्ज खयानत नाजिल ही ना होता। wow.